विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र नागपुर से विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। आप सुन रहे मोबाइल वाणी, मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। नमस्कार सर जी।
नमस्कार, नमस्कार पातुकर साहब।
सर जी, जैसा कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है और इस अवसर पर मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए और विशेषकर किसान भाइयों के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि मानव जीवन में खेती से लेकर थाली तक सुरक्षित और स्वस्थ भोजन कैसे पहुंच पाएगा?
इसका एकमात्र सलूशन है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग है, जिस दिशा में हमारी भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। जो आपने नाम सुना होगा, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी अभी आ गया है और नेचुरल फार्मिंग के लिए लगभग 459 करोड़ का प्रोविजन भी प्रपोज किया गया है, जो इस दिशा में फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। इसको अगर हम मीट आउट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में लगभग 80% फार्मर्स जो है स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे हैं, जिनको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है कल्टीवेशन के लिए। ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका बड़ा महत्व होता है और हम क्या खाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अच्छा भोजन, यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से और नेचुरल फार्मिंग से ही संभव है, यही एक सोल्यूशन होगा।
और सर जी,
जी
आज क्योंकि हम बात कर रहे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने संस्थान के माध्यम से
जी जी
कौन कौन से क्षेत्र में कार्यरत हो और आपकी संस्था इस क्षेत्र में किस तरह का कार्य करती है?
जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारी संस्था जो है, ऐसे तो आपने नाम सुना होगा, जो हमारा भारत सरकार कृषि मंत्रालय का एक INM डिवीजन है, उसके अंतर्गत काम कर रही है। हमारा हेडक्वार्टर NCNF गाजियाबाद में है और ऐसे हमारे 5 सेंटर वो हैं, जिसमें से नागपुर का सेंटर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 5 इम्पोर्टेंट राज्यों, खासतौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के साथ साथ दादर नगर हवेली में भी ये क्षेत्रीय प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। इसमें सब कई तरह के प्रावधान है। पहला मूल जो हमारा काम है वो क्वालिटी टेस्टिंग का होता है, जो भारत सरकार का एक फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, वो उसको हम उसके अंतर्गत जो है जो ऑर्गेनिक सैंपल और बायो फर्टिलाइजर के सैंपल आते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है यहाँ पर। इसके अलावा मैन पावर HRD के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं, जिसमें 30 दिन से लेके 5 दिन से लेके और 2 दिन और 1 दिन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है किसानों को भी, और उनके फील्ड में फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है। फिर बाद में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लगभग 700-500 किसानों को लेके हम लोग करते हैं, जो प्राकृतिक जैविक खेती सम्मेलन के नाम से अभी हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ से जो बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ये परंपरागत कृषि विकास योजना या नॉर्थ ईस्ट में चल रही है जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, उस सब में भी उनकी माउंटिंग भी करते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारी और भी जो हमारी इस तरह की संस्थाएं जो प्राकृतिक खेती जैविक खेती पर काम कर रही है, उनका डाटा भी हमारे पास आजकल हम संचित करने का काम कर रहे हैं।
सर जी, जैसा कि आपने कहा है कि नागपुर का जो सेंटर है वो 5 राज्यों में काम कर रहा है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में आपका संगठन कौन से समिचारी संस्थाओं के साथ मिलकर अभी काम कर रहा है?
हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी है। हम वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, पर अभी हमने कृषि विज्ञान केंद्रों को, जो ICR के कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके अंतर्गत आते हैं, या इवन प्राइवेट कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ मिलकर भी, और दूसरी संस्थाएं जैसे मैनेज है हैदराबाद में मैंने, उन सबके साथ कोऑपरेट करके, और इस तरह से आजकल हमने NRLM के साथ भी एक टाई अप हुआ है, जिसको हम तो उनको सबको उनके सबके साथ मिलकर और इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। अभी KBK पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, KBK के साथ मिलकर उनके एरिया में और स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ में लेते हुए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए किसानों को लाने में इस दिशा में प्रयास किया जाएगा।
सर जी, जैसा कि आजीविका मिशन के माध्यम से आप कार्य करते हो और हाल ही में मध्य प्रदेश के सौसर विकास खंड के अंतर्गत भी आपके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आपके इस मिशन में महिला किसानों की क्या भूमिका होती है?
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है महिलाओं की, क्योंकि ये जो आपने देखा होगा किसी भी मिशन को अगर पूर्ण करना है तो परिवार से, घर से, महिलाओं से शुरू अगर होता है कोई प्रोग्राम तो वो 100% सफल होता है। अभी हाल में जो आपने बात की, जो हमारा एक प्रोग्राम आपके नजदीक गांव में किया गया था जो जीवनी गांव है, तो वहाँ हमें काफी कुछ बहुत अच्छा पोटेंशियल देखा और मैंने देखा कि वहां पर कोई किसान वहां ना तो कोई ट्रैक्टर चला रहे हैं ना सब हल बकर से खेती कर रहे हैं, तो ऐसा एरिया ही प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए चाहिए और महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और आपके जो दूसरी संस्थाएं उनके साथ सपोर्ट कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही
है। सर जी, जैसा कि अभी जून माह चल रहा है और प्राकृतिक पारंपरिक खेती के अंतर्गत 7 जून से ही खेती प्रारंभ होती है और सभी खेत किसानों के खेत तैयार हो चुके और बोने के लिए बारिश की राह देख रहा है किसान, तो ऐसे समय में आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से खेती हो?
हाँ, बहुत अच्छा है। अभी जो समय आ गया है इसमें खेती को सुधारने की जरूरत है। हमारा जो पुराना जो तरीका था हमें उसको, मतलब जैसे ग्रीन मैन्योरिंग करते थे हमारे यहाँ पहले किसान, वो आज बहुत जरूरत है, तो ग्रीन मैन्योरिंग करना शुरू करना चाहिए। और इसके अलावा जो है खेत में एक्चुअली क्या है, जो हमारा जो ये सही वक्त है जब हम गोबर की अच्छी खाद जो मतलब जो FYM कहते हैं उसको हम अभी अप्लाई करना करें, क्योंकि ये बरसात के पहले खेत में जाना चाहिए। और इस सबसे क्या होगा कि आपके खेत की भूमि का सुधार होगा और आर्गेनिक कार्बन जो हमारा दिनों दिन घटता जा रहा है वो भी बढ़ेगा। तो और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि खेत को आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में ऐसे कुछ राज्य हैं, गुजरात में आप देखेंगे अच्छे जो प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले किसान हैं वो कभी अपने खेत को खाली नहीं छोड़ते, मतलब उसको क्या है उसमें कोई ना कोई चीज वहां रहना चाहिए ताकि वहां पर जो मॉइस्चर कंटेंट बना रहे और खेत खाली नहीं देखना चाहिए। पूरा खेत अगर आपने खाली कर दिया तो मिट्टी जो है पूरा इवेपोरेट हो जाती है और मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। तो ये समय है कि हम FYM यानी कि जो गोबर की अच्छी खाद है, जो अच्छी तैयार की गई खाद है, उसको हम हमारे खेतों में अप्लाई कर दें। दूसरा, बरसात आने की तैयारी जो हम करते हैं कि आप कहीं जहां से पानी निकलता है उसके बंधान जो कुछ भी इस तरह के हैं उनकी सबकी अच्छी से तैयारी कर लें ताकि आपका खेत का पानी खेत में रहे और एक अच्छा लेवल बन जाए ताकि आपका आर्गेनिक कार्बन जो है वो अपडेट हो जाएगा। जैसे हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो उससे बड़े फायदे मिलने वाले हैं।
सर जी, जैसा कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है और हम गांव आजीविका और हम के अंतर्गत विशेषकर खेती किसानी पर बात कर ले, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि कल ही विश्व कीट दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया गया है और क्योंकि कीट कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाते, कुछ कीट मित्र कीट भी होते, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए मित्र कीट कौन से और शत्रु कीट कौन से?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने की है। हम लोग जब आग लगा देते हैं इस तरह से करते हैं किसान भाई, तो उसमें हमारे मित्र शत्रु दोनों ही मर जाते हैं। मैं संदेश देना चाहूंगा आपके इस प्रश्न के माध्यम से कि हम हमारे किसान भाइयों को खेतों में सबसे पहले तो आग लगाना बंद करना होगा। बहुत सारे हमारे जो मित्र कीट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ये जो मकड़ी है और बहुत सारे जो जाइगोरामा बाइक्लोरेटा इस तरह के जो हमारे पार्थेनियम को भी जैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो सब मर जाते हैं। तो और इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं हमारी मिट्टी की एक्चुअली ऊपरी सतह ही है वो जीवित होती है, उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यदि किसान ने अपनी मिट्टी को जला दिया मतलब उसने अपनी जीवित मिट्टी को मार दिया। तो इसलिए अभी बहुत सारे जो हमारे जो लाभदायक कीड़े हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं उनको हमें संरक्षित करना है, तो उसके लिए ग्रीन मैन्योरिंग और ये इस तरह का काम करना चाहिए, ना कि आग लगाने का।
सर जी, जैसा कि अभी आपने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, क्योंकि अधिकतर देखने में आता है कि किसान लोग घास फूस जलाने के लिए आग लगाते हैं और यह वास्तव में नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसमें कई मित्र कीट और शत्रु कीट दोनों मर जाते हैं। हम आपसे आज इस अवसर पर यह भी जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए स्वस्थ भोजन, जो खेत से निकलकर थाली तक पहुंचता है, तो इसमें किसानों ने अपने खेती में किस तरह का नवाचार करना चाहिए और आप अपने संगठन के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं वहां का ऐसा कोई नवाचार आपके नॉलेज में हो तो वो भी हमारे किसान भाइयों को बताने का प्रयास कीजिए।
ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पूछ ली है। मैं चाहता हूँ कि नवाचार बहुत ही जरूरी है और जो प्राकृतिक खेती जैविक खेती में नवाचार का सबसे बड़ा स्थान है। हमारी एक बहुत बड़ी एक आपने शायद नाम सुना होगा कि नहीं, कि एक जैविक खेती का पोर्टल बनाया हुआ है जो भारत सरकार ने इसको ऑलरेडी मतलब आप देख सकते हैं गूगल में डालेंगे www.jaivikkheti.nic.com तो nic.in इसमें डालेंगे तो आपको एक बहुत सारे नवाचारों की लिस्ट भी मिल जाएगी। हमने कुछ एक बुक्स भी हम लोगों ने इसमें अपलोड की गई हैं, जैसे इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, मतलब ये अगर आप बात करें तो ITKs हम कहते हैं, तो ITKs के बिना ये ITKs बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसानों के द्वारा डेवलप किए गए हैं और इनका साइंटिफिक वैलिडेशन भी है। तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इनका साइंटिफिक वैलिडेशन किया है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अभी जीवामृत सभी किसानों ने अपना लिया और इस तरह से बहुत सारे दशपर्णी अर्क हैं या नीमाश्रय, ब्रह्माश्रय, अज्ञाश्रय, इन सब का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रयोग उनसे संबंधित लगभग 108 ITKs की बुकलेट हमने आपको आज मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। उससे इस पोर्टल में आप जाके देखिए, वहां से डाउनलोड कर सकता है हमारा किसान। आजकल हमारे किसान के बच्चे भी हैं वो ITK में काफी अच्छे हैं और उनको IT का भी नॉलेज है, तो वहां से तो आप ITKs में जाएंगे तो उसमें आपको नॉलेज करके नाम से एक वो आएगा और नॉलेज में आप जबकि क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी इस तरह के नवाचार की मिल जाएगी। और इस पर अगर आप कभी हमारे आपने जैसा चाहा है, हम चाहेंगे कि आप आपके कुछ किसानों को अगर आप जो बहुत ज्यादा अच्छे जो इनका इंटरेस्ट है उनकी एक लिस्ट हमें उपलब्ध करा दें तो हम उन्हें सबको हमारे सेंटर में एक अच्छा सा प्रशिक्षण हम हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ मिलकर किया जा सकता है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप ऐसे किसानों को एक लिस्ट हमें दे दें और उनको कौन सी उनका कौन सा दिन उनके लिए कब उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, हमारा संस्थान उनको ट्रेनिंग भी आयोजित करेगा। और इसके लिए भारत सरकार की योजनाएं जो हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाओं से क्या क्या लाभ मिलता है, जैसे अभी नई योजना जो आ गई है जो जिसको हम बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसमें भी क्लस्टर मोड पे काम हो रहा है और बहुत सारे राज्यों में किसान जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, है ना। 12,45,000 का पर मतलब क्लस्टर के हिसाब से बहुत सारा बेनिफिट है। अगर आप डिटेल में आएंगे तो हम जी कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे ले सकते हैं और किससे संपर्क करना चाहिए, इस सब की भी जानकारी आपको देना चाहेंगे।
सर जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसानों को आप प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करने की बात आपने कही है। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मोबाइल वाणी संपूर्ण देश में झारखंड, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी ऐसे 7-8 राज्यों में गांव आजीविका मिशन को लेकर मोबाइल वाणी के माध्यम से एक नवाचार चल रहा है जो किसानों को सीधे कॉल करके खेती किसानी से संबंधित जानकारी देते हैं। तो हम मोबाइल वाणी के माध्यम से आपसे चाहेंगे कि आप समय समय पर मोबाइल वाणी पर संबंधित विषयों पर कम से कम अपनी 20 मिनट की जानकारी साझा करते रहिए, यही हम आपसे चाहेंगे। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आजीविका मिशन के माध्यम से भी कार्यरत हो और मध्य प्रदेश में 67 क्षेत्र में जो आजीविका मिशन है इसके माध्यम से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और यहाँ पर भी कुछ ऐसे नवाचार देखने को मिल रहे हैं। यदि हम भूमा की बात करें तो वहां पर इतना अच्छा नवाचार देखने को मिल रहा है, आप भी वहां का एक बार भ्रमण कीजिए। वो गांव पूर्णतः तो शौच मुक्त है, खुले में शौच मुक्त है और उस गांव में गोबर गैस से घर पर लाइट जलाई जाती है, उसी से गैस पर खाना पकाया जाता है और बहुत अच्छा गांव है वो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप भी वहां पर विजिट दे।
जरूर, आप जब भी कहेंगे हमारा पूरी टीम हम कभी भी आपके गांव को विजिट भी करेंगे और जो भी हमारा संस्थान जो भी आपकी मदद कर सकता है उसके लिए हमेशा आपके साथ।
तो हम आज इस अवसर पर आपसे जानना चाहेंगे पुनः एक बार कि आज आप आजीविका मिशन की उन स्वसहायता समूह की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्योंकि अधिकतर महिलाएं खेत में कार्य के लिए जाती है निंदाई गुड़ाई के लिए, तो किस तरह अपने खेती को एक नवाचार के हिसाब से वो अपना कार्य कर सके।
जी जी नहीं, ये बहुत, हमने अभी जब आपके गांव में विजिट किया था वहाँ, तो मैंने देखा कि आपके यहाँ जो महिलाएं हैं बहुत ही डेडिकेटेड हैं, अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, और उनको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, जो हम जो आपके जो जो वहाँ के जो अपन जैसे जिनको बोलते हैं कि मस्ट ट्रेनर हम लोग बनाते हैं, तो उनको हम अगर हम चाहेंगे कि एक अच्छा सा ट्रेनिंग उनको दे दें ताकि वो मस्ट ट्रेनर बन जाएं और वो दूसरों को भी ट्रेन करें। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, और मुझे लगता है कि ये लाइवलीहुड में बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। और सौंसर जिला, सौंसर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, सॉरी छिंदवाड़ा का जो सौंसर एरिया है, वो बहुत ही अच्छा काम, यानी पूरे देश को दिखाने लायक काम वहाँ हो सकता है इन महिलाओं के माध्यम से। और वो मातृशक्ति में बहुत ताकत होती है, अगर उन्होंने अपना संकल्प लिया, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने संकल्प लिया कि हम अब आग नहीं लगाएंगे और हमारे मिट्टी में जो है वो जहर और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ये सब का छिड़काव नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हमारी जो मिट्टी है हमारी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो पाएगी और स्वस्थ और अच्छा भोजन प्राप्त हो सकेगा। यही हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत
सर जी, इस अवसर पर हम आपसे एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे सर जी। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती के साथ और कौन सा पूरक व्यवसाय या पूरक कार्य किसान कर सकता है, उसकी भी जानकारी दे दीजिए।
बहुत अच्छी बात है ये, किसान अब एक्चुअली किसान को अभी हमें खेती, केवल खेती नहीं, उसके साथ अलाइड करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए धंधे हैं, जैसे मैं सोचता हूँ कि खेती के साथ डेयरी जो है, अगर खेती है डेयरी नहीं है तो खेती इनकम्प्लीट है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज इनकम्प्लीट विदाउट काउ मींस एनिमल्स है। तो एनिमल को लेके पहले आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो हमारा किसी भी किसान का जब हम स्टेटस देखते थे तो कितने जोड़ी बैल उनके पास हैं, कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, उससे उसका आकलन होता था। आज के समय में आप देखिए कि किसानों ने अपने घर से इन गायों को, इन बैलों को, इन को निकाल दिया। अभी स्थिति ये हो गई है कि किसान जो है केवल ट्रैक्टर पर और दूसरे मैकेनिकलाइजेशन पर आधारित हो गया, लेकिन ये ट्रैक्टर से गोबर नहीं मिल सकता। तो हमें अपनी मिट्टी को अगर सुरक्षित और संरक्षित और लाइव रखना है तो गोबर की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरा आज का जो संदेश है कि आप गौ माता को, गाय को और जानवरों को, मतलब बैलों को, इनको सबको बचाने की जरूरत है, इनकी रेयरिंग फिर से करना चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि गौ बस्ते लक्ष्मी जो कहा गया है, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो गाय के गौमूत्र में होते हैं, जो बहुत ही लाभदायक होते हैं, उससे अच्छा कोई खाद नहीं होता। तो गोबर गौमूत्र से बहुत अच्छा खेती हो सकती है। और जहां जहां आपने देखा होगा, हमने उस गांव में जब बात करी तो महिलाओं ने बताया कि जहां हम गाय को और भैंस को और जानवरों को बांधते थे वहां पर फर्टिलिटी अपने आप 10% बढ़ जाती है सब, और किसी केमिकल को हम वहां नहीं डालते तो भी वहां पर खेती अच्छी हो रही है, महिलाओं ने मुझे कुछ बताया। तो ये इंडिकेट करता है कि हमें आज का जो ये है, ये हमारे गाय और बैल, इन सबको फिर से हमें अपने खेतों में लाना होगा, उनकी सेवा, और वो एक्चुअली सही कहा जाए तो बैकबोन है एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग के, नेचुरल फार्मिंग के।
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर अजय सिंह राजपूत सर, नागपुर से क्षेत्रीय निदेशक। आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से रूबरू होकर महत्वपूर्ण बातें आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर कही, इसलिए मोबाइल वाणी पुनः आपका एक बार धन्यवाद करती है।
जी जी, और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हमको जो है फूड का जो एनुअल फूड प्रोडक्शन जो है लगभग 383 मेट्रिक टन लाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, हमारी जो जनरेशन है उसको कैसे हम भोजन उपलब्ध कराएं। अभी हमारा 310 मेट्रिक टन ही है, तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको लाने के लिए हमें अभी हर समय, हर साल जो है लगभग 10% जो है वो कल्टिवेटेड एरिया जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, वो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की तरफ लाना चाहिए, तभी ये स्वस्थ और अच्छा भोजन हमारे हमारे मतलब लोगों को मिल पाएगा और वो स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ जीवन अगर चाहिए तो हमें खाना, स्वस्थ और अच्छा खाना मिलना चाहिए।
जी आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर।
नमस्कार, थैंक यू।